दूसरा कुरिन्थियों अध्याय एक। परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित पौलुस तथा हमारे भाई तिमुथियुस की ओर से कुरिन्थिस परमेश्वर की कलीसिया तथा अखाया के समूचे क्षेत्र के पवित्र जनों के नाम, हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य है, वह करुणा का स्वामी है और आनंद का स्रोत है। हमारी हर विपत्ति में वह हमें शांति देता है, ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसे ही शांति दे सकें जैसे परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि जैसे मसीह की यातनाओं में हम सहभागी हैं, वैसे ही मसीह के द्वारा हमारा आनंद भी तुम्हारे लिए उमड़ रहा है। यदि हम कष्ट उठाते हैं तो वह तुम्हारे आनंद और उद्धार के लिए है। यदि हम आनंदित हैं तो वह तुम्हारे आनंद के लिए है। यह आनंद उन्हीं यातनाओं को जिन्हें हम भी सह रहे हैं तुम्हें धीरज के साथ सहने को प्रेरित करता है। तुम्हारे विषय में हमें पूरी आशा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे कष्टों को तुम बांटते हो, वैसे ही हमारे आनंद में भी तुम्हारा भाग है। हे भाइयों, हम यह चाहते हैं कि तुम उन यातनाओं के बारे में जानो जो हमें एशिया में झेलनी पड़ी थी। वहाँ हम हमारी सहन शक्ति की सीमा से कहीं अधिक बोझ के तले दब गए थे, यहाँ तक कि हमें जीने तक की कोई आशा नहीं रह गई थी। हाँ, अपने अपने मन में हमें ऐसा लगता था जैसे हमें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, ताकि हम अपने आप पर और अधिक भरोसा न रख कर उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो मरे हुओं को भी फिर से जिला देता है। हमें उस भयानक मृत्यु से उसी ने बचाया, और हमारी वर्तमान परिस्थितियों में भी वही हमें बचाता रहेगा। हमारी आशा उसी पर टिकी है, वही हमें आगे भी बचाएगा। यदि तुम भी हमारी ओर से प्रार्थना करके सहयोग दोगे तो हमें बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है उसके लिए बहुत से लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद देने का कारण मिल जाएगा। हमें इसका गर्व है कि हम यह बात साफ मन से कह सकते हैं कि हमने इस जगत के साथ और खासकर तुम लोगों के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के अनुरूप व्यवहार किया है। हमने उस सरलता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया है जो परमेश्वर से मिलती है, न कि दुनियावी बुद्धि से। हाँ, इसलिए हम उसे छोड़ तुम्हें बस और कुछ नहीं लिख रहे हैं, जिससे तुम हमें पूरी तरह वैसे ही समझ लोगे जैसे तुमने हमें आंशिक रूप से समझा है। तुम हमारे लिए वैसे ही गर्व कर सकते हो जैसे हम तुम्हारे लिए उस दिन गर्व करेंगे जब हमारा प्रभु यीशु फिर आएगा। और इसी विश्वास के कारण मैंने पहले तुम्हारे पास आने की ठानी थी, ताकि तुम्हें दोबारा से आशीर्वाद का लाभ मिल सके। मैं सोचता हूँ कि मकिदुनिया जाते हुए तुमसे मिलूं, और जब मकिदुनिया से लौटूं तो फिर तुम्हारे पास जाऊं, और फिर तुम्हारे द्वारा ही यहूदिया के लिए विदा किया जाऊं। मैंने जब ये योजनाएं बनाई थी तो मुझे कोई संशय नहीं था, या मैं जो योजनाएं बनाता हूं तो क्या उन्हें सांसारिक ढंग से बनाता हूं कि एक ही समय हाँ हाँ भी कहता रहूं और ना ना भी करता रहूं। परमेश्वर विश्वसनीय है, और वह इसकी साक्षी देगा कि तुम्हारे प्रति हमारा जो वचन है एक साथ हाँ और ना नहीं कहता। क्योंकि तुम्हारे बीच जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का हमने यानी सिल्वानुस, तिमुथियुस और मैंने प्रचार किया है, वह हाँ और ना दोनों एक साथ नहीं है, बल्कि उसके द्वारा एक चिरंतन हाँ की ही घोषणा की गई है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञाएं की हैं, वे यीशु में सब के लिए हाँ बन जाती हैं। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं, वह परमेश्वर की ही महिमा के लिए होता है। वह जो तुम्हें मसीह के व्यक्ति के रूप में हमारे साथ सुनिश्चित करता है, और जिसने हमें भी अभिषिक्त किया है, वह परमेश्वर ही है, जिसने हम पर अपने स्वामित्व की मुहर लगाई और हमारे भीतर बयाने के रूप में वह पवित्र आत्मा दी, जो इस बात का आश्वासन है कि जो देने का वचन उसने हमें दिया है उसे वह हमें देगा। साक्षी के रूप में परमेश्वर की दुहाई देते हुए और अपने जीवन की शपथ लेते हुए मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा कुरिन्थुस इसलिए नहीं आया था कि मैं तुम्हें पीड़ा से बचाना चाहता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तुम्हारे विश्वास पर काबू पाना चाहते हैं। तुम तो अपने विश्वास में अडिग हो, बल्कि बात यह है कि हम तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे सहकर्मी हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2। इसलिए मैंने यह निश्चय कर लिया था कि तुम्हें फिर से दुख देने तुम्हारे पास न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें दुखी करूंगा तो फिर भला ऐसा कौन होगा जो मुझे सुखी करेगा, सिवाय तुम्हें जिन्हें मैंने दुख दिया है। यही बात तो मैंने तुम्हें लिखी है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए उनके द्वारा मुझे दुख न पहुंचाया जाए, क्योंकि तुम सब में मेरा यह विश्वास रहा है कि मेरी प्रसन्नता में ही तुम सब प्रसन्न होगे, क्योंकि तुम्हें मैंने दुख भरे मन और वेदना के साथ आंसू बहा बहा कर यह लिखा है, पर तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है वह कितना महान है तुम इसे जान सको। किंतु यदि किसी ने मुझे कोई दुख पहुंचाया है तो वह मुझे ही नहीं बल्कि किसी न किसी मात्रा में तुम सबको पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे समुदाय ने जो दंड दे दिया है वही पर्याप्त है। इसलिए तुम तो अब उसके विपरीत उसे क्षमा कर दो और उसे प्रोत्साहित करो, ताकि वह कहीं बढ़े चढ़े दुख में ही डूब ना जाए। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम उसके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाओ। या मैंने तुम्हें यह देखने के लिए लिखा है कि तुम परीक्षा में पूरे उतरते हो कि नहीं और सब बातों में आज्ञाकारी रहोगे या नहीं। किंतु यदि तुम किसी को किसी बात के लिए क्षमा करते हो तो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, और जो कुछ मैंने क्षमा किया है यदि कुछ क्षमा किया है तो वह मसीह की उपस्थिति में तुम्हारे लिए ही किया है, ताकि हम शैतान से मात न खा जाएं, क्योंकि उसकी चालों से हम अनजान नहीं हैं। जब मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मैं त्रोआस आया तो वहाँ मेरे लिए प्रभु का द्वार खुला हुआ था। अपने भाई तीतुस को वहाँ न पाकर मेरा मन बहुत व्याकुल था, सो उनसे विदा लेकर मैं मकिदुनिया को चल पड़ा। किंतु परमेश्वर धन्य है जो मसीह के द्वारा अपने विजय अभियान में हमें सदा राह दिखाता है और हमारे द्वारा हर कहीं अपने ज्ञान की सुगंध फैलाता है, क्योंकि उनके लिए जो अभी उद्धार की राह पर हैं और उनके लिए भी जो विनाश के मार्ग पर हैं, हम मसीह की परमेश्वर को समर्पित मधुर भीनी सुगंधित धूप हैं। किंतु उनके लिए जो विनाश के मार्ग पर हैं, यह मृत्यु की ऐसी दुर्गंध है जो मृत्यु की ओर ले जाती है, पर उनके लिए जो उद्धार के मार्ग पर बढ़ रहे हैं यह जीवन की ऐसी सुगंध है जो जीवन की ओर अग्रसर करती है। किंतु इस काम के लिए सुपात्र कौन है? परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए उसमें मिलावट करके बेचने वाले बहुत से दूसरे लोगों जैसे हम नहीं हैं। नहीं, हम तो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की ओर से भेजे हुए व्यक्तियों के समान मसीह में स्थित होकर सच्चाई के साथ बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3। इससे क्या ऐसा लगता है कि हम फिर से अपनी प्रशंसा अपने आप करने लगे हैं, अथवा क्या हमें तुम्हारे लिए या तुमसे परिचय पत्र लेने की आवश्यकता है जैसा कि कुछ लोग करते हैं? निश्चय ही नहीं, हमारा पत्र तो तुम स्वयं हो जो हमारे मन में लिखा है, जिसे सभी लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, और तुम भी तो ऐसा ही दिखाते हो मानो तुम मसीह का पत्र हो जो हमारी सेवा का परिणाम है, जिसे स्याही से नहीं बल्कि सजीव परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है, जिसे पथरीली शिलाओं पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय पटल पर लिखा गया है। हमें मसीह के कारण परमेश्वर के सामने ऐसा दावा करने का भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में इतने समर्थ हैं जो सोचने लगे हैं कि हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं, बल्कि हमें सामर्थ्य तो परमेश्वर से मिलता है। उसी ने हमें एक नए करार का सेवक बनने योग्य ठहराया है। यह कोई लिखित संहिता नहीं है बल्कि आत्मा की वाचा है, क्योंकि लिखित संहिता तो मारती है जबकि आत्मा जीवन देती है। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इसराइल के लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एक टक न देख सके। और यद्यपि उसका वह तेज बाद में क्षीण हो गया, फिर भला आत्मा से युक्त सेवा और अधिक तेजस्वी क्यों नहीं होगी। और फिर जब दोषी ठहराने वाली सेवा में इतना तेज है, तो उस सेवा में कितना अधिक तेज होगा जो धर्मी ठहराने वाली सेवा है। क्योंकि जो पहले तेज से परिपूर्ण था, वह अब उस तेज के सामने जो उससे कहीं अधिक तेजस्वी है, तेज रहित हो गया है। क्योंकि वह सेवा जिसका तेजहीन हो जाना निश्चित था, वह तेजस्वी थी, तो जो नित्य है वह कितनी तेजस्वी होगी। अपनी इसी आशा के कारण हम इतने निर्भय हैं। हम उस मूसा के जैसे नहीं हैं जो अपने मुख पर पर्दा डाले रहता था। कहीं इसराइल के लोग, यहूदी अपनी आंखें गड़ाकर, जिसका विनाश सुनिश्चित था, उस सेवा के अंत को न देख ले। किंतु उनकी बुद्धि बंद हो गई थी, क्योंकि आज तक जब वे उस पुरानी वाचा को पढ़ते हैं, तो वही पर्दा उन पर बिना हटाए पड़ा रहता है, क्योंकि वह पर्दा बस मसीह के द्वारा ही हटाया जाता है। आज तक जब जब मूसा का ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वालों के मन पर वह पर्दा पड़ा ही रहता है। किंतु जब किसी का हृदय प्रभु की ओर मुड़ता है, तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। देखो, जिस प्रभु की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ, वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है, वहाँ छुटकारा है। सो हम सभी अपने खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं, तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं, और हमारा तेज अधिकाधिक बढ़ने लगता है। यह तेज उस प्रभु से ही प्राप्त होता है, यानी आत्मा से। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से यह सेवा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम निराश नहीं होते। हमने तो लज्जापूर्ण गुप्त कार्यों को छोड़ दिया है। हम कपट नहीं करते, और न ही हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, बल्कि सत्य को सरल रूप में प्रकट करके लोगों की चेतना में परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रशंसा के योग्य ठहराते हैं। जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, उस पर यदि कोई पर्दा पड़ा है, तो यह केवल उनके लिए पड़ा है जो विनाश की राह पर चल रहे हैं। इस युग के स्वामी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को न देख पाएं। हम स्वयं अपना प्रचार नहीं करते, बल्कि प्रभु के रूप में मसीह यीशु का उपदेश देते हैं, और अपने बारे में तो यही कहते हैं कि हम यीशु के नाते तुम्हारे सेवक हैं। क्योंकि उसी परमेश्वर ने, जिसने कहा था अंधकार से ही प्रकाश चमकेगा, वही हमारे हृदयों में प्रकाशित हुआ है, ताकि हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति मिल सके। किंतु हम जैसे मिट्टी के पात्रों में यह संपत्ति इसलिए रखी गई है कि यह अलौकिक शक्ति हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की सिद्ध हो। हम हर समय हर किसी प्रकार से कठिन दबाव में जीते हैं, किंतु हम कुचले नहीं गए हैं। हम घबराए हुए हैं, किंतु निराश नहीं हैं। हमें यातनाएं दी जाती हैं, किंतु हम छोड़े नहीं गए हैं। हम झुका दिए गए हैं, पर नष्ट नहीं हुए हैं। हम सदा अपनी देह में यीशु की मृत्यु को हर कहीं लिए रहते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारी देहों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो। यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर मौत के हाथों सौंपा जाता है, ताकि यीशु का जीवन भी नाशवान शरीरों में स्पष्ट रूप से उजागर हो। इसी से मृत्यु हम में और जीवन तुम में सक्रिय है। शास्त्र में लिखा है,
मैंने विश्वास किया था इसलिए मैं बोला।
हम में भी विश्वास की वही आत्मा है और हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर उठाया, वह हमें भी उसी तरह जीवित करेगा जैसे उसने यीशु को जिलाया था, और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सामने खड़ा करेगा। ये सब बातें तुम्हारे लिए ही की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों में फैलती जा रही परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर को महिमा मंडित करने वाले अधिकाधिक धन्यवाद देने में प्रतिफलित हो सकें। इसलिए हम निराश नहीं होते, यद्यपि हमारे भौतिक शरीर क्षीण होते जा रहे हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई से नई होती जा रही है। हमारा पल भर का या छोटा मोटा दुख एक अनंत अतुलनीय महिमा पैदा कर रहा है। जो कुछ देखा जा सकता है, हमारी आँखें उस पर नहीं टिकी हैं, बल्कि अदृश्य पर टिकी हैं, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह विनाशी है, जबकि जिसे नहीं देखा जा सकता वह अविनाशी है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी यह काया अर्थात यह तंबू जिसमें हम इस धरती पर रहते हैं गिरा दिया जाए, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक चिरस्थायी भवन मिल जाता है, जो मनुष्य के हाथों बना नहीं होता। सो हम जब तक इस आवास में हैं, हम रोते धोते रहते हैं और यही चाहते रहते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन में जा बसें। निश्चय ही हमारी यह धारणा है कि हम उसे पाएंगे और फिर बेघर नहीं रहेंगे। हम में से वे जो इस तंबू यानी भौतिक शरीर में स्थित है बोझ से दबे करा रहे हैं, कारण यह है कि हम इन वस्त्रों को त्यागना नहीं चाहते, बल्कि उनके ही ऊपर उन्हें धारण करना चाहते हैं, ताकि जो कुछ नाशवान है उसे अनंत जीवन निगल ले। जिसने हमें इस प्रयोजन के लिए ही तैयार किया है वह परमेश्वर ही है। उसी ने इस आश्वासन के रूप में कि अपने वचन के अनुसार वह हमको देगा बयाने के रूप में हमें आत्मा दी है। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी देह में रह रहे हैं प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं, बस आंखों देखी के सहारे नहीं। हमें विश्वास है, इसी से मैं कहता हूँ कि हम अपनी देह को त्याग कर प्रभु के साथ रहने को अच्छा समझते हैं। इसी से हमारी यह अभिलाषा है कि हम चाहे उपस्थित रहें और चाहे अनुपस्थित उसे अच्छे लगते रहें। हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। इसलिए प्रभु से डरते हुए हम सत्य को ग्रहण करने के लिए लोगों को समझाते बुझाते हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं है, और मुझे आशा है कि तुम भी हमें पूरी तरह जानते हो। हम तुम्हारे सामने फिर से अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं कि तुम हम पर गर्व कर सको, ताकि जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु पर गर्व करते हैं न कि उस पर जो कुछ उनके मन में है, उन्हें उसका उत्तर मिल सके। क्योंकि यदि हम दीवाने हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, और यदि सयाने हैं तो वह तुम्हारे लिए है। हमारा नियंता तो मसीह का प्रेम है, क्योंकि हमने अपने मन में यह धार लिया है कि वह एक व्यक्ति मसीह सब लोगों के लिए मरा, अतः सभी मर गए, और वह सब लोगों के लिए मरा, क्योंकि जो लोग जीवित हैं वे अब आगे बस अपने ही लिए न जीते रहें, बल्कि उसके लिए जिएं जो मरने के बाद फिर जीवित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से न देखें। यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी सांसारिक दृष्टि से देखा था, कुछ भी हो अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही हैं, सब कुछ नया हो गया है। और फिर ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती हैं, जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। हमारा संदेश है कि परमेश्वर लोगों के पापों की अनदेखी करते हुए मसीह के द्वारा उन्हें अपने में मिला रहा है और उसी ने मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने का संदेश हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें चेता रहा है। मसीह की ओर से हम तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मिल जाओ। जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाएं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। परमेश्वर के कार्य में साथ साथ काम करने के नाते हम तुम लोगों से आग्रह करते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह तुम्हें मिला है उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि उसने कहा है,
मैंने उचित समय पर तेरी सुन ली और मैं उद्धार के दिन तुझे सहारा देने आया।
देखो उचित समय यही है, देखो उद्धार का दिन यही है। हम किसी के लिए कोई विरोध उपस्थित नहीं करते जिससे हमारे काम में कोई कमी आए, बल्कि परमेश्वर के सेवक के रूप में हम हर तरह से अपने आप को अच्छा सिद्ध करते रहते हैं। धैर्य के साथ सब कुछ सहते हुए यातनाओं के बीच, विपत्तियों के बीच, कठिनाइयों के बीच, मार खाते हुए, बंदी गृहों में रहते हुए, अशांति के बीच परिश्रम करते हुए, रातों रात पलक भी न झपकाकर, भूखे रहकर, अपनी पवित्रता, ज्ञान और धैर्य से अपनी दयालुता, पवित्र आत्मा के वरदानों और सच्चे प्रेम, अपने सच्चे संदेश और परमेश्वर की शक्ति से नेकी को ही अपने दाएं बाएं हाथों में ढाल के रूप में लेकर, हम आदर और निरादर के बीच अपमान और सम्मान में अपने को उपस्थित करते रहते हैं। हमें ठग समझा जाता है यद्यपि हम सच्चे हैं, हमें गुमनाम समझा जाता है जबकि हमें सभी जानते हैं, हमें मरते हुओं सा जाना जाता है पर देखो हम तो जीवित हैं, हमें दंड भोगते हुओं सा जाना जाता है तब भी देखो हम मृत्यु को नहीं सौंपे जा रहे हैं, हमें शोक से व्याकुल समझा जाता है जबकि हम तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं, हम दिन हीनों के रूप में जाने जाते हैं जबकि हम बहुतों को वैभवशाली बना रहे हैं, लोग समझते हैं हमारे पास कुछ नहीं है जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। हे कुरिन्थियों, हमने तुमसे पूरी तरह खुलकर बातें की हैं, तुम्हारे लिए हमारा मन खुला है, हमारा प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, किंतु तुमने हमसे प्यार करना रोक दिया है। तुम्हें अपना बच्चा समझते हुए मैं कह रहा हूँ कि बदले में अपना मन तुम्हें भी हमारे लिए पूरी तरह खुला रखना चाहिए। अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। ऐसे ही मसीह का शैतान से कैसा तालमेल, अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसा साझा, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था,
मैं उनमें निवास करूंगा, चलूं फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे जन बनेंगे। इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो, अब तुम कभी कुछ भी न छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है।
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7। हे प्रिय मित्रों, क्योंकि हमारे पास ये प्रतिज्ञा हैं, इसलिए आओ परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण हम अपनी पवित्रता को परिपूर्ण करते हुए अपने बाहरी और भीतरी सभी दोषों को धो डालें। अपने मन में हमें स्थान दो, हमने किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाई है, हमने किसी के साथ छल नहीं किया है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि तुम तो हमारे मन में बसते हो, यहाँ तक कि हम तुम्हारे साथ मरने को या जीने को तैयार हैं। मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, तुम पर मुझे बड़ा गर्व है। मैं सुख चैन से हूँ, अपनी सभी यातनाएं झेलते हुए मुझ में आनंद उमड़ता रहता है। जब हम मकिदुनिया आए थे तब भी हमें आराम नहीं मिला था, बल्कि हमें तो हर प्रकार के दुख उठाने पड़े थे, बाहर झगड़ों से और मन के भीतर डर से। किंतु दिन दुखियों को सुखी करने वाले परमेश्वर ने तीतुस को यहाँ पहुँचाकर हमें सांत्वना दी है, और वह भी केवल उसके यहाँ पहुँचने से नहीं, बल्कि इससे हमें और अधिक सांत्वना मिली कि तुमने उसे कितना सुख दिया था। उसने हमें बताया कि हमसे मिलने को तुम कितने व्याकुल हो, तुम्हें हमारी कितनी चिंता है, इससे हम और भी प्रसन्न हुए। यद्यपि अपने पत्र से मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है, किंतु फिर भी मुझे उसके लिखने का खेद नहीं है। चाहे पहले मुझे इसका दुख हुआ था, किंतु अब मैं देख रहा हूँ कि उस पत्र से तुम्हें बस पल भर को ही दुख पहुँचा था। सो अब मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए नहीं कि तुमको दुख पहुँचा था, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण ही तुमने पछतावा किया। तुम्हें वह दुख परमेश्वर की ओर से ही हुआ था, ताकि तुम्हें हमारे कारण कोई हानि न पहुँच पाए। क्योंकि वह दुख जिसे परमेश्वर देता है एक ऐसे मन फिराव को जन्म देता है जिसके लिए पछताना नहीं पड़ता, और जो मुक्ति दिलाता है। किंतु वह दुख जो संसारिक होता है उससे तो बस मृत्यु जन्म लेती है। देखो, यह दुख जिसे परमेश्वर ने दिया है उसने तुम में कितना उत्साह जगा दिया है, अपने भोलेपन की कितनी प्रतिरक्षा, कितना आक्रोश, कितनी आकुलता, हमसे मिलने की कितनी बेचैनी, कितना साहस, पापी के प्रति न्याय चुकाने की कैसी भावना पैदा कर दी है। तुमने हर बात में यह दिखा दिया है कि इस बारे में तुम कितने निर्दोष थे। सो यदि मैंने तुम्हें लिखा था तो उस व्यक्ति के कारण नहीं जो अपराधी था, और न ही उसके कारण जिसके प्रति अपराध किया गया था, बल्कि इसलिए लिखा था कि परमेश्वर के सामने हमारे प्रति तुम्हारी चिंता का तुम्हें बोध हो जाए। इससे हमें प्रोत्साहन मिला है। हमारे इस प्रोत्साहन के अतिरिक्त तीतुस के आनंद से हम और अधिक आनंदित हुए, क्योंकि तुम सब के कारण उसकी आत्मा को चैन मिला है। तुम्हारे लिए मैंने उससे जो बढ़ चढ़कर बातें की थी उसके लिए मुझे लजाना नहीं पड़ा है, बल्कि हमने जैसे तुमसे सब कुछ सच सच कहा था, वैसे ही तुम्हारे बारे में हमारा गर्व तीतुस के सामने सत्य सिद्ध हुआ है। वह जब यह याद करता है कि तुम सब ने किस प्रकार उसकी आज्ञा मानी और डर से थरथर कांपते हुए तुमने कैसे उसको अपनाया, तो तुम्हारे प्रति उसका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं प्रसन्न हूँ कि मैं तुम में पूरा भरोसा रख सकता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8। देखो हे भाइयों, अब हम यह चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में जानो जो मकुदिनिया क्षेत्र की कलिसियाओं पर किया गया है। मेरा अभिप्राय यह है कि यद्यपि उनकी कठिन परीक्षा ली गई, तो भी वे प्रसन्न रहे, और अपनी गहन दरिद्रता के रहते हुए भी उनकी संपूर्ण उदारता उमड़ पड़ी। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उन्होंने जितना दे सकते थे दिया, इतना ही नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य से भी अधिक मन भर के दिया। वे बड़े आग्रह के साथ संत जनों की सहायता करने में हमें सहयोग देने को विनय करते रहे। उनसे जैसी हमें आशा थी वैसे नहीं, बल्कि पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल वे हमें अर्पित हो गए। इसलिए हमने तीतुस से प्रार्थना की कि जैसे वह अपने कार्य का प्रारंभ कर ही चुका है, वैसे ही इस अनुग्रह के कार्य को वह तुम्हारे लिए करे। और जैसे कि तुम हर बात में, यानी विश्वास में, वाणी में, ज्ञान में, अनेक प्रकार के उपकार करने में और हमने तुम्हें जिस प्रेम की शिक्षा दी है उस प्रेम में भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर हो जाओ। यह मैं आज्ञा के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अन्य व्यक्तियों के मन में तुम्हारे लिए जो तीव्रता है उस प्रेम की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम परिचित हो। तुम यह जानते हो कि धनी होते हुए भी तुम्हारे लिए वह निर्धन बन गया, ताकि उसकी निर्धनता से तुम मालामाल हो जाओ। इस विषय में मैं तुम्हें अपनी सलाह देता हूँ, तुम्हें यह शोभा देता है तुम पिछले साल न केवल दान देने की इच्छा में सबसे आगे थे, बल्कि दान देने में भी सबसे आगे रहे। अब दान करने की उस तीव्र इच्छा को तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से पूरा करो। तुम इसे उतनी ही लगन से पूरा करो जितनी लगन से तुमने इसे चाहा था, क्योंकि यदि दान देने की लगन है तो उस व्यक्ति के पास जो कुछ है उसी के अनुसार उसका दान ग्रहण करने योग्य बनता है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि दूसरों को तो सुख मिले और तुम्हें कष्ट, बल्कि हम तो बराबरी चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि उनके इस अभाव के समय में तुम्हारी संपन्नता उनकी आवश्यकताएं पूरी करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आगे चलकर उनकी संपन्नता भी तुम्हारे अभाव को दूर कर सके, ताकि समानता स्थापित हो, जैसा कि शास्त्र कहता है,
जिसने बहुत बटोरा उसके पास अधिक न रहा, और जिसने अल्प बटोरा उसके पास स्वल्प न रहा।
परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने तीतुस के मन में तुम्हारी सहायता के लिए वैसे ही तीव्र इच्छा भर दी है जैसी हमारे मन में है, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और वह उसके लिए विशेष रूप से अपनी इच्छा भी रखता है। इसलिए वह स्वयं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे पास आने को विदा हो रहा है। हम उसके साथ उस भाई को भी भेज रहे हैं जिसका सुसमाचार के प्रचार के रूप में सभी कलीसियाओं में हर कहीं यश फैल रहा है। इसके अतिरिक्त इस दयापूर्ण कार्य में कलीसियाओं ने उसे हमारे साथ यात्रा करने को नियुक्त भी किया है। यह दया कार्य जिनका प्रबंध हमारे द्वारा किया जा रहा है स्वयं प्रभु को सम्मानित करने के लिए और परोपकार में हमारी तत्परता को दिखाने के लिए है। हम सावधान रहने की चेष्टा कर रहे हैं। इस बड़े धन के लिए जिसका प्रबंध कर रहे हैं कोई हमारी आलोचना न करे, क्योंकि हमें अपनी अच्छी साख बनाए रखने की चिंता है, न केवल प्रभु के आगे बल्कि लोगों के बीच भी। और उनके साथ हम अपने उस भाई को भी भेज रहे हैं जिसे बहुत से विषय में और बहुत से अवसरों पर हमने परोपकार के लिए उत्सुक व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया है, और अब तो तुम्हारे लिए उसमें जो असीम विश्वास है उससे उसमें सहायता करने का उत्साह और अधिक हो गया है। जहाँ तक तीतुस का क्षेत्र है तो वह तुम्हारे बीच सहायता कार्य में मेरा साथी और साथ साथ काम करने वाला रहा है, और जहाँ तक हमारे बंधुओं का प्रश्न है वे तो कलीसियाओं के प्रतिनिधि तथा मसीह के सम्मान हैं। सो तुम उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण देना, और तुम्हारे लिए हम इतना गर्व क्यों रखते हैं इसे सिद्ध करना, ताकि सभी कलीसिया उसे देख सकें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9। अब संतों की सेवा के विषय में तुम्हें इस प्रकार लिखते चले जाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहायता के लिए तुम्हारी तत्परता को मैं जानता हूँ, और उसके लिए मकिदुनिया निवासियों के सामने यह कहते हुए मुझे गर्व है कि अखाया के लोग तो पिछले साल से ही तैयार हैं, और तुम्हारे उत्साह ने उनमें से अधिकतर को कार्य के लिए प्रेरणा दी है। किंतु मैं भाइयों को तुम्हारे पास इसलिए भेज रहा हूँ कि तुमको लेकर हम जो गर्व करते हैं वह इस बारे में व्यर्थ सिद्ध न हो, और इसलिए भी कि तुम तैयार रहो जैसा कि मैं कहता आया हूँ। नहीं तो जब कोई मकिदुनियावासी मेरे साथ तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें तैयार नहीं पाएगा तो हम उस विश्वास के कारण जिसे हमने तुम्हारे प्रति दर्शाया है लज्जित होंगे, और तुम तो और भी अधिक लज्जित होगे। इसलिए मैंने भाइयों से यह कहना आवश्यक समझा कि वे हमसे पहले ही तुम्हारे पास जाएं और जिन उपहारों को देने का तुम पहले ही वचन दे चुके हो उन्हें पहले ही से उदारता पूर्वक तैयार रखें। इसलिए यह दान स्वेच्छा पूर्वक तैयार रखा जाए, न कि दबाव के साथ तुमसे छीनी गई किसी वस्तु के रूप में। इसे याद रखो, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, और जिसकी बुआई अधिक है वह अधिक ही काटेगा। हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसने मन में सोचा है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न दाता से ही प्रेम करता है, और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार के उत्तम वरदानों की वर्षा कर सकता है, जिससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं में सदा प्रसन्न हो सकते हो, और सभी अच्छे कार्यों के लिए फिर तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक रहेगा, जैसा कि शास्त्र में लिखा है।
वह मुक्त भाव से दीन जनों को देता है, और उसकी चीर उदारता सदा सदा को बनी रहती है।
वह परमेश्वर ही बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन सुलभ कराता है। वहाँ तुम्हें बीज देगा और उसकी बढ़वार करेगा, उसी से तुम्हारे धर्म की खेती फूलेगी फलेगी। तुम हर प्रकार से संपन्न बनाए जाओगे, ताकि तुम हर अवसर पर उदार बन सको। तुम्हारी उदारता परमेश्वर के प्रति लोगों के धन्यवाद को पैदा करेगी। दान की इस पवित्र सेवा से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रति अत्यधिक धन्यवाद का भाव भी उपजता है, क्योंकि तुम्हारी इस सेवा से जो प्रमाण प्रकट होता है उससे संत जन परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में तुम्हारे विश्वास की घोषणा से उत्पन्न हुई तुम्हारी आज्ञाकारिता के कारण और अपनी उदारता के कारण उनके लिए तथा दूसरे सभी लोगों के लिए तुम दान देते हो, और वे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हुए तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा करेंगे। तुम पर परमेश्वर के असीम अनुग्रह के कारण उस वरदान के लिए जिसका बखान नहीं किया जा सकता परमेश्वर का धन्यवाद है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10। मैं पौलुस निजी तौर पर मसीह की कोमलता और सहनशीलता को साक्षी करके तुमसे निवेदन करता हूँ। लोगों का कहना है कि मैं जो तुम्हारे बीच रहते हुए विनम्र हूँ, किंतु वही मैं जब तुम्हारे बीच नहीं हूँ तो तुम्हारे लिए निर्भय हूँ। और मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब मैं तुम्हारे बीच हूँ तो उसी विश्वास के साथ वैसी निर्भयता दिखाने को मुझ पर दबाव मत डालना, जैसी कि मेरे विचार में मुझे कुछ उन लोगों के विरुद्ध दिखानी होगी जो सोचते हैं कि हम एक संसारी जीवन जीते हैं। क्योंकि यद्यपि हम भी इस संसार में ही रहते हैं, किंतु हम संसारी लोगों की तरह नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जिन शास्त्रों से हम युद्ध लड़ते हैं वे सांसारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें गढ़ों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है, और उन्हीं शास्त्रों से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है खंडन करते हैं। जब तुम में पूरी आज्ञाकारिता है तो हम हर प्रकार की अनाज्ञा को दंड देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे सामने जो तथ्य हैं उन्हें देखो। यदि कोई अपने मन में यह मानता है कि वह मसीह का है, तो वह अपने बारे में फिर से याद करे कि वह भी उतना ही मसीह का है जितना कि हम हैं। और यदि मैं अपने उस अधिकार के विषय में कुछ और गर्व करूं, जिसे प्रभु ने हमें तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक निर्माण के लिए दिया है, तो इसके लिए मैं लज्जित नहीं हूं। मैं अपने पर नियंत्रण रखूंगा कि अपने पत्रों के द्वारा तुम्हें भयभीत करने वाले के रूप में न दिखूं। मेरे विरोधियों का कहना है, पौलुस के पत्र तो भारी भरकम और प्रभावपूर्ण होते हैं, किंतु मेरा व्यक्तित्व दुर्बल और वाणी अर्थहीन है। किंतु ऐसे कहने वाले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे बीच न रहते हुए जब हम अपने पत्रों में कुछ लिखते हैं, तो उसमें और तुम्हारे बीच रहते हुए हम जो कर्म करते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। हम उन कुछ लोगों के साथ अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु जब वे अपने को एक दूसरे से नापते हैं और परस्पर अपनी तुलना करते हैं तो वे यह दर्शाते हैं कि वे नहीं जानते कि वे कितने मूर्ख हैं। जो भी हो, हम उचित सीमाओं से बाहर बढ़ चढ़कर बात नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर ने हमारी गतिविधियों की जो सीमाएं हमें सौंपी हैं, हम उन्हीं में रहते हैं और वे सीमाएं तुम तक पहुंचती हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि यदि हम तुम तक नहीं पहुंच पाते तो हो जाता, किंतु तुम तक यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर हम तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे हैं। अपनी उचित सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के काम पर हम गर्व नहीं करते, किंतु हमें आशा है कि तुम्हारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही हमारी गतिविधियों के क्षेत्र के साथ तुम्हारे बीच हम भी व्यापक रूप से फैलेंगे। इससे तुम्हारे क्षेत्र से आगे भी हम सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे। किसी अन्य को जो काम सौंपा गया था उस क्षेत्र में अब तक जो काम हो चुका है, हम उसके लिए शेखी नहीं बघारते। जैसा कि शास्त्र कहता है, जिसे गर्व करना है वह प्रभु ने जो कुछ किया है उसी पर गर्व करे, क्योंकि अच्छा वही माना जाता है जिसे प्रभु अच्छा स्वीकारता है, न कि वह जो अपने आप को स्वयं अच्छा समझता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11। काश तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, हाँ तुम उसे सही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी सजगता के साथ जो परमेश्वर से मिलती है सजग हूँ। मैंने तुम्हारी मसीह से सगाई करा दी है ताकि तुम्हें एक पवित्र कन्या के समान उसे अर्पित कर सकूं। किंतु मैं डरता हूँ कि कहीं जैसे उस सर्प ने हव्वा को अपने कपट से भ्रष्ट कर दिया था, वैसे ही कहीं तुम्हारा मन भी उस एक निष्ठ भक्ति और पवित्रता से जो हमें मसीह के प्रति रखनी चाहिए भटका न दिया जाए। क्योंकि जब कोई तुम्हारे पास आकर जिस यीशु का उपदेश हमने तुम्हें दिया है उसे छोड़ किसी दूसरे यीशु का तुम्हें उपदेश देता है, अथवा जो आत्मा तुमने ग्रहण की है उससे अलग किसी और आत्मा को तुम ग्रहण करते हो, अथवा छुटकारे के जिस संदेश को तुमने ग्रहण किया है उससे भिन्न किसी दूसरे संदेश को भी ग्रहण करते हो, तो तुम बहुत प्रसन्न होते हो। पर मैं अपने आप को तुम्हारे उन बड़े प्रेरितों से बिल्कुल भी छोटा नहीं मानता। हो सकता है मेरे बोलने की शक्ति सीमित है, किंतु मेरा ज्ञान तो असीम है। इस बात को हमने सभी बातों में तुम्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया है। और फिर मैंने मुफ्त में सुसमाचार का उपदेश देकर तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को झुकाते हुए क्या कोई पाप किया है? मैंने दूसरी कलीसियाओं से अपना परिश्रमिक लेकर उन्हें लूटा है ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी आवश्यकता पड़ने पर मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि मकिदुनिया से आए भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी थीं। मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर न बोझ बनने दिया है और न बनने दूंगा। और क्योंकि मुझ में मसीह का सत्य निवास करता है, इसलिए अखाया के समूचे क्षेत्र में मुझे बढ़ चढ़कर बोलने से कोई नहीं रोक सकता। भला क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? परमेश्वर जानता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किंतु जो मैं कर रहा हूँ उसे तो करता ही रहूँगा, ताकि उन तथाकथित प्रेरितों के गर्व को, जो गर्व करने का कोई ऐसा बहाना चाहते हैं जिससे वे भी उन कामों में हमारे बराबर समझे जा सकें जिनका उन्हें गर्व है, मैं उनके उस गर्व को समाप्त कर सकूं। ऐसे लोग नकली प्रेरित हैं, वे छली हैं, वे मसीह के प्रेरित होने का ढोंग करते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी नेकी के सेवकों का स्वरूप धर लें तो इसमें क्या बड़ी बात है, किंतु अंत में उन्हें अपनी करनी के अनुसार फल तो मिलेगा ही। मैं फिर दोहराता हूँ कि मुझे कोई मूर्ख न समझे, किंतु यदि फिर भी तुम ऐसे समझते हो तो मुझे मूर्ख बनाकर ही स्वीकार करो, ताकि मैं भी कुछ गर्व कर सकूं। अब यह जो मैं कह रहा हूँ वह प्रभु के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक मूर्ख के रूप में गर्वपूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अपने सांसारिक जीवन पर ही गर्व करते हैं, फिर तो मैं भी गर्व करूँगा, और फिर तुम तो इतने समझदार हो कि मूर्खों की बातें प्रसन्नता के साथ सह लेते हो, क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाए, तुम्हारा शोषण करे, तुम्हें किसी जाल में फंसाए, अपने को तुमसे बड़ा बनाए अथवा तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारे, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं लज्जा के साथ कह रहा हूँ, हम बहुत दुर्बल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर गर्व करने का साहस करता है, तो वैसा ही साहस मैं भी करूँगा। मैं मूर्खता पूर्वक कह रहा हूँ, इब्रानी वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। इसराइली वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। इब्राहिम की संतान वे ही तो नहीं है, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? एक सनकी की तरह मैं यह कहता हूँ कि मैं तो उससे भी बड़ा मसीह का दास हूँ। मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया है, मैं बार बार जेल गया हूँ, मुझे बार बार पीटा गया है, अनेक अवसरों पर मेरा मौत से सामना हुआ है। 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40-40 कोड़े खाए हैं। मैं 3-3 बार लाठियों से पीटा गया हूँ, 1 बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया, 3 बार मेरा जहाज डूबा, 1 दिन और 1 रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई, मैंने भयानक नदियों, खूंखार डाकुओं, स्वयं अपने लोगों, विधर्मियों, नगरों, ग्रामों, समुद्रों और दिखावटी बंधुओं के संकटों के बीच अनेक यात्राएं की हैं। मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है, अनेक अवसरों पर मैं सो तक नहीं पाया हूँ, भूखा और प्यासा रहा हूँ, प्रायः मुझे खाने तक को नहीं मिल पाया है, बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुरता रहा हूँ, और अब और अधिक क्या कहूँ। मुझ पर सभी कलीसियाओं की चिंता का भार भी प्रतिदिन बना रहा है। किसकी दुर्बलता मुझे शक्तिहीन नहीं कर देती है, और किसके पाप में फंसने से मैं बेचैन नहीं होता हूँ। यदि मुझे बढ़ चढ़ कर बातें करनी ही हैं, तो मैं उन बातों को करूँगा जो मेरी दुर्बलता की हैं। परमेश्वर और प्रभु यीशु का परमपिता, जो सदा ही धन्य है, जानता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था, तो महाराजा अरितास के राज्यपाल ने दमिश्क पर घेरा डालकर मुझे बंदी कर लेने का जतन किया था, किंतु मुझे नगर की 4 दीवारी की खिड़की से टोकरी में बैठाकर नीचे उतार दिया गया, और मैं उसके हाथों से बच निकला। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12। अब तो मुझे गर्व करना ही होगा, इससे कुछ मिलना नहीं है, किंतु मैं तो प्रभु के दर्शनों और प्रभु के दैवी संदेशों पर गर्व करता ही रहूंगा। मैं मसीह में स्थित एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे 14 साल पहले मैं नहीं जानता, बस परमेश्वर ही जानता है, दे सहित या दे रहित तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, और मैं जानता हूँ कि इसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता, बस परमेश्वर ही जानता है, बिना शरीर के या शरीर सहित स्वर्ग लोक में उठा लिया गया था, और उसने ऐसे सब सुने जो वर्णन से बाहर है और जिन्हें बोलने की अनुमति मनुष्य को नहीं है। हाँ, ऐसे मनुष्य पर मैं अभिमान करूँगा, किंतु स्वयं अपने पर, अपनी दुर्बलताओं को छोड़कर अभिमान नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैं अभिमान करने की सोचूं, तो भी मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, क्योंकि तब मैं सत्य कह रहा होऊंगा, किंतु तुम्हें मैं इससे बचाता हूँ ताकि कोई मुझे जैसा करते देखता है या कहते सुनता है उससे अधिक श्रेय न दे। असाधारण दैवी संदेशों के कारण मुझे कोई गर्व न हो जाए, इसलिए एक कांटा मेरी देह में चुभाया गया है, जो शैतान का दूत है, वह मुझे दुखता रहता है ताकि मुझे बहुत अधिक घमंड न हो जाए। कांटे की इस समस्या के बारे में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की है कि वह इस कांटे को मुझ में से निकाल ले, किंतु उसने मुझसे कह दिया है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ, ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। इस प्रकार मसीह की ओर से मैं अपनी निर्बलताओं, अपमानों, कठिनाइयों, यातनाओं और बाधाओं में आनंद लेता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी शक्तिशाली होता हूँ। मैं मूर्खों की तरह बतियाता रहा हूँ, किंतु ऐसा करने को मुझे विवश तुमने किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। यद्यपि वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, पर तुम्हारे उन महाप्रेरितों से मैं किसी प्रकार भी छोटा नहीं हूँ। किसी को प्रेरित सिद्ध करने वाले आश्चर्यपूर्ण संकेत, अद्भुत कर्म और आश्चर्य कर्म भी तुम्हारे बीच धीरज के साथ प्रकट किए गए हैं। मैंने हर प्रकार की यातना झेली है, चाहे संकेत हो, चाहे कोई चमत्कार या आश्चर्य कर्म। तुम दूसरी कलीसियाओं से किस दृष्टि से कम हो, सिवाय इसके कि मैं तुम पर किसी प्रकार भी कभी भार नहीं बना हूँ। मुझे इसके लिए क्षमा करो। देखो, तुम्हारे पास आने को अब मैं तीसरी बार तैयार हूँ, पर मैं तुम पर किसी तरह का बोझ नहीं बनूंगा। मुझे तुम्हारी संपत्तियों की नहीं, तुम्हारी चाहत है, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता के लिए कोई बचत करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों के लिए माता पिता को ही बचत करनी होती है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास जो कुछ है तुम्हारे लिए प्रसन्नता के साथ खर्च करूँगा, यहाँ तक कि अपने आप को भी तुम्हारे लिए खर्च कर डालूंगा। यदि मैं तुमसे अधिक प्रेम रखता हूँ तो भला तुम मुझे कम प्यार कैसे करोगे। हो सकता है मैंने तुम पर कोई बड़ा बोझ न डाला हो, किंतु तुम्हारा कहना है मैं कपटी था, मैंने तुम्हें अपनी चालाकी से फंसा लिया। क्या जिन लोगों को मैंने तुम्हारे पास भेजा था उनके द्वारा तुम्हें छला था? नहीं, तीतुस और उसके साथ हमारे भाई को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्या उसने तुम्हें कोई धोखा दिया? नहीं, क्या हम उसी निष्कपट आत्मा से नहीं चलते रहे? क्या हम उन्हीं चरण चिन्हों पर नहीं चले? अब तुम क्या यह सोच रहे हो कि एक लंबे समय से हम तुम्हारे सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, किंतु हम तो परमेश्वर के सामने मसीह के अनुयायी के रूप में बोल रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए है, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें वैसा ना पाऊं जैसा पाना चाहता हूं, और तुम भी मुझे वैसा ना पाओ जैसा मुझे पाना चाहते हो। मुझे भय है कि तुम्हारे बीच मुझे कहीं आपसी झगड़े, ईर्ष्या, क्रोधपूर्ण कहा सुनी, व्यक्तिगत षड्यंत्र, अपमान, कानाफूसी, हेकड़पन और अव्यवस्था न मिले। मुझे डर है कि जब मैं फिर तुमसे मिलने आऊं तो तुम्हारे सामने मेरा परमेश्वर कहीं मुझे लज्जित न करे और मुझे उन बहुतों के लिए विलाप न करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किए हैं और अपवित्रता, व्यभिचार तथा भोग विलास में डूबे रहने के लिए पछतावा नहीं किया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13। यह तीसरा अवसर है जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शास्त्र कहता है हर बात की पुष्टि दो या तीन गवाहियों की साक्षी पर की जाएगी। जब दूसरी बार मैं तुम्हारे साथ था मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, और अब जब मैं तुमसे दूर हूँ मैं तुम्हें फिर चेतावनी देता हूँ कि यदि मैं फिर तुम्हारे पास आया तो जिन्होंने पाप किए हैं और जो पाप कर रहे हैं उन्हें और शेष दूसरे लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इस बात का प्रमाण चाहते हो कि मुझ में मसीह बोलता है, वह तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है बल्कि समर्थ है। यह सच है कि उसे उसकी दुर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, किंतु अब वह परमेश्वर की शक्ति के कारण ही जी रहा है। यह भी सच है कि मसीह में स्थित हम निर्बल हैं, किंतु तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर की शक्ति के कारण हम उसके साथ जिएंगे। यह देखने के लिए अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास पूर्वक जी रहे हो। अपनी जांच पड़ताल करो, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि वह यीशु मसीह तुम्हारे भीतर ही है? यदि ऐसा नहीं है तो तुम इस परीक्षा में पूरे नहीं उतरे। मैं आशा करता हूँ कि तुम यह जान जाओगे कि हम इस परीक्षा में किसी भी तरह विफल नहीं हुए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए वही करो जो उचित है, चाहे हम इस परीक्षा में विफल हुए ही क्यों ना दिखाई दें। वास्तव में हम सत्य के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो जो करते हैं सत्य के लिए ही करते हैं। हमारी निर्बलता और तुम्हारी सबलता हमें प्रसन्न करती हैं, और हम इसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम दृढ़ से दृढ़तर बनो। इसलिए तुमसे दूर रहते हुए भी मैं इन बातों को तुम्हें लिख रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हारे बीच हूँ तो मुझे प्रभु के द्वारा दिए गए अधिकार से तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हारे साथ कठोरता न बरतनी पड़े। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विदा लेता हूँ। अपने आचरण ठीक रखो, वैसा ही करते रहो जैसा करने को मैंने कहा है। एक जैसा सोचो, शांति पूर्वक रहो, जिससे प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र चुंबन द्वारा एक दूसरे का स्वागत करो। सभी संतों का तुम्हें नमस्कार। तुम पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ रहे।